भ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल हमने श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ की थी। उसमें मैंने बतलाया था सुखदेव गोस्वामी वृंदावन के श्रीमती राधिका जी के सुख थे और कैसे सुख के रूप में इस जगत में प्रकट हुए। जब वो घर से निकले भागे तो उनके पिताजी व्यास जी हा पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े और सुखदेव गोस्वामी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पेड़ों की प्रतिध्वनि वन से जो प्रतिध्वनि निकली वो भी निकली हा पुत्र किस लिए कर रहा, कौन किसका पुत्र कौन किसका, आगे निकल गए। जब वन में जा रहे थे तो एक सरोवर में कमल के फूल खिल रहे थे, बहुत ही स्वच्छ और निर्मल पानी, प्रकृति बड़ी सजी हुई थी। उसमें कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी, कपड़े रख दिया बाहर तट पर और नंगी स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी जी गए, उनके तरफ देखा भी नहीं और वो आगे निकल गए। वो ऐसे ही स्नान करती रही, बातचीत करती रही, हंसी मजाक करती रही। थोड़ी देर के बाद में उनके पिताजी उनको खोजते हुए आए, उनके केश सफेद पूरे, दाढ़ी सफेद, उम्र भी सैकड़ों वर्षों की। जब आए तो लड़कियां वहां पानी से निकल करके जल्दी से कपड़े अपने पहन लिए और उनको प्रणाम किया। इन्होंने कहा बेटी एक बात पूछूं, हमारा बेटा किशोर 16 वर्ष का गया और तुम लोगों को लज्जा नहीं हुई, ऐसे ही बातचीत करती रही और स्नान करती रही। मैं तो हमारे सामने में तू छोटी सी बच्ची है, मैं तेरे पिता का पिता का पितामह हूं और हमसे लज्जा क्यों हुई। उन्होंने उत्तर दिया आपका लड़का गया किंतु हमको उसने नहीं देखा, न बातचीत किया, आप किस लिए बातचीत कर रहे, उसने तो हमको लकड़ी सूखे हुए लकड़ी की भांति देखा, इसलिए पेड़ की से नंगा रहे या जैसा रहे उसे कोई लज्जा की बात नहीं होती, किंतु आप पूछ रहे हैं आप में स्त्री और पुरुष का भेद है, उसमें स्त्री और पुरुष का भेद नहीं। वो भगवान भजन में एकदम तन्मय है, संसार में कहां कौन है, कौन स्त्री है पुरुष है, क्या है जिसको ये पता नहीं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के सभा में पहुंचे हैं। थोड़ा सा और इनका वर्णन करूं, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है कि ये सुखदेव गोस्वामी जी को उनके पिताजी ने और कुछ ज्ञान लाभ करने के लिए जनकपुरी में भेजा, मिथिला में महाराज जनक के पास में। जब गए तो इनको 7 दिन ड्योही पर ही पहले गेट पर रोक दिया, कोई किसी ने पूछा नहीं, मत तभी भीतर मत आओ, 7 दिन पड़े रहे। हम लोग रहते तो अपमानित होकर के चले आते। 7 दिन के बाद में हुकुम हुआ जी इनको छोड़ दो, दूसरी गेट में घुसे, दूसरे गेट में आए। वहां पर बड़ी बड़ी सुंदर से सुंदर स्त्रियां, हाथों में चमर, पंखे, पानी, ये सब लेकर के उनके अभ्यागत कर रही हैं। कुछ भी फर्क नहीं, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं, उनकी दृष्टि का आकर्षण नहीं कर सकी। इसके बाद में महाराज जनक अपनी स्त्री के पास में गए, सुखदेव गोस्वामी जी आ रहे हैं, तुम नख से सिख तक खूब सुंदर श्रृंगार करो। सुनयनाम किसको कहते हैं? सुनयना जिनके नेत्र बड़े सुंदर लुभावने हैं, बहुत सी सुंदर, बहुत ही सुंदरी थी। अरे सीता जी की मैया है, कितनी सुंदरी होंगी। वैसे ही रूपवती गुणवती थी, उन्होंने सुनैजा अपनी स्त्री को कहा, नित्य किशोरी रहने वाली, तुम श्रृंगार करके और जाकर के मेरे सिंहासन पर बैठ जाना। वो नक्ष श्रृंगार करके एकदम अच्छी तरह से प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी आए, उनको एक तरफ में नारद जी बैठे थे और दूसरे तरफ में इनको बैठा दिया एक ही सिंहासन पर। इधर में नारद जी बैठे हैं और उन सुखदेव गोस्वामी के इधर बैठा है, और इतने में उनकी पत्नी सुनैना जी उनके दोनों के बीच में आकर के बैठ गई। जब बैठ गई, नारद जी ने उनको प्रणाम किया सुनैना जी को। सुनैना जी को प्रणाम किया माता कह करके, मां आपको मेरे लिए प्रणाम है। और वहां से उठ करके नीचे चले गए, नीचे बैठ गए, और सुखदेव जी वैसे ही बैठे के बैठे रह गए। उनको तनिक भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा जे कोई सुंदरी है या कौन है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आत्माराम जोगी हैं, उनको संसार के सौंदर्य से मोह से कोई भी तात्पर्य नहीं है। वो अपने प्रभु के अंदर में उनका सब समय चित्त लगा रहता है, कृष्ण की लीलाएं सब समय उनको स्मरण होता है। संसार में कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, क्या काम है, क्या प्रेम जगत का है, उसके तरफ उनका चित्त ही नहीं है, सब समय उसमें भरपूर है। ऐसे महाजोगी, महाभक्त, रसिक और भागवत, संसार से मुक्त सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर पहुंचे। उनको देखकर के सभी लोग खड़े हो गए। इनके पिता व्यास जी भी थे, इनके गुरु के गुरु नारद जी भी थे, कपिल इत्यादि ऋषि लोग थे, कभी हबी अंतरिक्ष प्रबुद्ध पलायन गौतम इत्यादि जितने भारतवर्ष के कश्यप इत्यादि बड़े बड़े ऋषि महर्षि उस सभा में बैठे हुए थे। सुखदेव गोस्वामी जी जाते ही सब लोग उठ के खड़े हो गए और उनको व्यास गद्दी पर बैठे, जैसे हमको यहां पर बैठाया गया है इतना ऊंचे आसन पर। नंग धड़ंग स्त्रियां धूल लेकर के उन पर झोंक रही थी, बच्चे पत्थर उनको मार रहे थे, चिढ़ा रहे थे, समझते थे ये पागल है। और जहां सभा में आए और सब लूट करके खड़े होकर के अभिवादन किया, वो डर गई स्त्रियां और वो लड़के भाग गए सब, और इनको बीच में बैठा। परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किया, मैं बहुत संक्षेप में बतलाता जा रहा हूं। प्रश्न किया, जो अभी तुरंत मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी हम लोगों को अभी शरीर छोड़ देने वाला, और जो आज न कल न बरसों न परसों मरेंगे किंतु जरूर मरेंगे, इनके लिए क्या करणीय है, क्या करना कर्तव्य है? ये दो प्रश्न मेरे हैं। संसार में जिसने जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, भगवान सत्य है कि नहीं सत्य है ये तो पीछे की बात, पहले तो ये देखना है ना संसार में क्या सत्य दिखता है, मरना और जीना। जरूर हमको मरना पड़ेगा, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको दुख नहीं है, जिसको बुढ़ापा नहीं आएगा, जिसको दुख और क्लेश नहीं होगा, जिसको रोग नहीं होगा। हम समझते हैं जो माता जी हमारे घर में बैठी हैं कम से कम तो 80-84 वर्ष की होंगी, देखिए चल फिर नहीं सकती, कोई घर में खाने की कमी नहीं है, बेटा डॉक्टर है बहुत बड़ा, घर में कमी नहीं है रुपए पैसे की, खाने की कमी नहीं है कुछ, फिर भी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ, बैठ नहीं सकती, सो नहीं सकती, बताओ ये सब कष्ट। आंख से देख नहीं सकती, चल नहीं सकती अपने आप, कुछ दिनों के बाद में और भी जर्ट अवस्था होगी, टट्टी करने भी पेशाब करने भी नहीं जा सकेंगे। याद करो उस चीज की, इसलिए जगत में दुख है, ये भी परम सत्य है, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज जी के दो प्रश्न, अभी जो मर रहा है आज कल में नहीं मरने वाला है, या अभी तुरंत मर रहा है उसके लिए क्या कर्तव्य, और जो कल परसों वर्षों मरेगा उसके लिए क्या कर्तव्य। हम लोग उसे विचार नहीं करते, विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आ गया, कोई पता है जो कहां से आए हैं। हम समझते हैं शरीर ही ये मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसको हम पीछे से दृष्टांत देकर के बतलाए, दो प्रश्न किया और उसी का उत्तर ये दे रहे हैं। देखो सबई पुनसांग परो धर्मो जतो भक्ति रथो खजे अहेतुक्य प्रतिशता जात्मा संप्रसिद्धति। मनुष्य मात्र के लिए, केवल मनुष्य ही नहीं, जीव मात्र के लिए, जो प्राण धारण करने वाले हैं प्राणी, चाहे कीट पतंग हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गंधर्व और देवता हो, कोई भी हो, सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए ही भगवान का भजन करना जरूरी है। भगवान किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जिससे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जिसमें छह प्रकार के गुण हैं, और एक्सट्रीम रूप में उसे बढ़कर के और कोई बलवान नहीं है, उसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं है, उसमें जितना ज्ञान है सब है, उसके समान सुंदर रूप नहीं है, और उसमें त्याग और वैराग्य भी है, ऐश्वर्य समग्रस्य, जितना प्रकार का ऐश्वर्य है जिसकी हम कम कल्पना नहीं कर सकते, वो ऐसा है, ऐसा बलवान है, जम भी उसके पास नहीं जा सकता, जिसके नाम सुनते ही जम भाग उठता है, मृत्यु टल जाती है, सबसे बड़ा सुंदर, और ऐसा जगत में कोई गुण नहीं है जो उसमें नहीं है, परम अद्भुत ज्ञान, ज्ञान की परिसमाप्ति वहीं पर है, और उसमें वैराग्य है, ये छह प्रकार के गुण, भग माने गुण, वान जो गुणों से युक्त है, वो भगवान होगा, जो इच्छा करते ही अंगुली पर गिरिराज को धारण कर लिया, लाखों गोपियों के साथ में लाखों गोपियां बनकर कृष्ण बनकर के उनके साथ में नित्य किया, एक ही समय में कितने नाजन रूप धारण कर सकता है, जिनके राम और सब जितने भी अवतार हैं सब उन्हीं के रूप हैं, इसलिए वो भगवान। और भगवान माने क्या होता है, भ माने होता है भरण पोषण करने वाला, अखिल विश्व ब्रह्मांड का हम जाने और न जाने सबका भरण पोषण करता है, ग माने होता है संचालक, विश्व ब्रह्मांड का संचालन करता है, ग माने होता है नेता भी, सबका संचालन करने वाला, कैसे, समुद्र में लहरें आ रही हैं, कभी लहर बंद नहीं होती, ठीक समय पर आती है, सूर्य ठीक समय पर उगता है, चंद्र ठीक समय पर उगता है, दिन रात समय से होता है, कभी छोटे कभी बड़े, ऋतु भी होती हैं, ऋतु में ये सबको कौन कंट्रोल करता है, किसी को बच्चा, कोई लड़की हो गई या लड़का हो गया, कौन कंट्रोल करता है, हमारे कर्मों का फल कौन देने वाला है, वही है। इसलिए ग माने समस्त संसार को, विश्व को जो संचालन करता है उसको कहते हैं ग, और वह माने अखिल प्राणियों में जो वास करता है, निवास करता है, और अखिल प्राणी जिनमें निवास करते हैं, इसलिए हम भगवान नहीं हो सकते, ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, समस्त प्राणी हमारे अंदर नहीं है और न हम उनमें हैं, समस्त गुणों के आधार हम नहीं हैं, हम तो मूर्ख हैं, एक सोचते हैं दूसरी बात होती है, आंख भी हमारी अपने को नहीं देखती, आंख भी नहीं देखती, पीछे में क्या है ये भी नहीं देखता, दुख होगा कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी ठीक नहीं, इसलिए हम अज्ञानी है, वो पूर्ण ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसलिए ये गुण जिनमें है वो भगवान है। तो कहते ऐसे भगवान के प्रति जो भक्ति होती है, जय प्रभु मैं तेरा हूं मैं तेरी हूं ऐसा मान करके यदि कोई आराधना करता है, उसकी बातें सुन लेते हैं। अभी हम अपने पड़ोसी को बुलाएंगे, हमारे पति यहां से बहुत दूर बैठे हैं और फोन नहीं है, तो यहां से हम यदि पुकारे वो नहीं सुनेंगे, नहीं आएंगे, और यदि सुनेंगे भी तो क्या करेंगे, हम मर रहे हैं, कहीं हमारी रक्षा करो। पति रक्षा कर सकता है न, भाई रक्षा कर सकता है न, डॉक्टर रक्षा कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण इस हृदय में बैठे हैं, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके अंदर में वो नहीं है, रोम रोम में है, समस्त प्राणियों में है, चेतन अचेतन ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें नहीं है। ऐसे प्रभु की आराधना करना चाहिए। आराधना बड़ी कठिन नहीं है, बड़ी सहज है। अपनी मैया को प्रसन्न करना अधिक कोई कठिन परिश्रम की बात नहीं होती। क्यों? मैया को जरा उसकी गोदी में बैठ जाओ, मैया जरा ऐसे पकड़ लो, बस मैया प्रसन्न हो जाए। ऐसे कृष्ण को प्रसन्न करना कोई भी कठिन बात नहीं है। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो मन बुद्धि और चित्त के द्वारा शरीर के द्वारा देखे नहीं जा सकते, उनका अनुभव नहीं कर सकते, किंतु वो हमको अनुभव करने वाले हैं, उनके प्रति अहेतुकी भक्ति करो। अहेतुकी मैंने बिना कारण, कॉजलेस। उनको कुछ पुष्प चढ़ाओ तो ये मत कहो जे प्रभु हमने आपको पुष्प चढ़ाया और हमारी 150 तल्ले का बिल्डिंग बन जाए, हमारा बिजनेस जरा सुधर जाए, हमारा लड़का या लड़की पास हो जाए, इसलिए कुछ मत चाहो। ये सब चीजें नगण्य चीजें हैं, वो ऐसा चीज देंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। इसलिए अहेतुकी भक्ति करो, लेन देन का व्यापारी मत बनो, व्यवसायी मत बनो, भगवान का नाम किया और ये चाह लिया, ऐसा मत करो। अहेतुकी बिना किसी कारण के करो। कैसे? जैसे बिना कारण के ही नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, कोई कारण नहीं। जैसे बिना किसी कारण के ही, बिना किसी स्वार्थ के पानी सबको जीवन देता है, सूरज सबको ऊपर बाए, चाहे कोई सूरज को गाली दे, सूरज माने और न माने कि तो अपनी रोशनी देगा कि नहीं, बिना किसी कारण के सबको स्नेह करता है। इसलिए जीवात्मा भगवान का आदास है, इसलिए विषय बिना किसी कारण के हम उनकी भक्ति करेंगे, यही जीव मात्र का धर्म है। वो कैसे होगा? प्रेम से होगा। प्रेम नहीं है तो हजार उपासना करो वो प्रसन्न नहीं होंगे, उनको किस चीज की आवश्यकता नहीं। और प्रेम से विद्रानी का साग भी खाया, साग बिदुर घर खाए, शबरी के बेर खाए, उनको बेर की कमी थी नहीं। प्रेम यदि हो तो सब कुछ है, प्रेम नहीं जान। इसी की पहली स्थिति में कहते हैं साधन भक्ति, फिर कहते हैं भाव भक्ति, इसके में कहते हैं प्रेम भक्ति। जैसे कच्चा आम, बीज वाला आम और पका हुआ आम, सभी आम है। इसी तरह से वास्तवी भगवती भक्ति जो होगा प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। यदि भगवान के प्रति ये भक्ति हो, क्या भक्ति हो? भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, जपेंगे, साधुओं का संग करके उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, उसी का चिंतन करेंगे, जहां पर उनकी लीलाएं हुई हैं, जैसे वृंदावन इत्यादि धाम है, वहां पर कभी जाएंगे, वहां की मिट्टी सिर पर धारण करेंगे, उनका अर्चन करेंगे। कुछ नहीं है, एक फोटो ले लिया, उसी को ही माला दे दिया, उसी को चंदन और धूप दे दिया, वो देखते हैं ना वहां पर भी है, वो समझते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, इसका नाम है भक्ति। यही करते 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 हमारे अंदर में वो भक्ति प्रेम के रूप में बदल जाएगी और उसी के द्वारा वो प्राप्त होते हैं। उस समय में अपने आप संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा और भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, हमको कहां जाना है, ये अपने आप उसी के फल से ये सब मालूम हो जाएगा। उसी को ब्रह्म ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, और उन्हीं को योगी लोग परमात्मा कहते हैं, और उन्हीं को ही भक्त लोग भगवान कहते हैं। तीनों अलग नहीं है, एक ही तत्व है। इसको तस्माद एकेन मनसा भगवान लब्धा सूत्र लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थतम नित्यम अपि अधीर तूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत निशेषाय विषय खलु सर्वतः। परीक्षित महाराज जी, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बतला रहे हैं, अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में। यदि तुरंत अभी आदमी मरने वाला है, तुरंत एकदम उसका ठीक नहीं, अभी मर रहा है किंतु कुछ बोल सकता है, तो उसको कहो जे कृष्ण नाम करो, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और इतना भी समय नहीं है तो कृष्ण कह दो या राम कह दो, दोनों में से कुछ एक कह दो, बस मृत्यु को वो पार कर जाएगा, भव सागर को वो पार कर जाएगा, गारंटी है। इसमें कभी भी शंका और संदेह मत करना, जरूर होगा। क्यों, हम गाय खरीदते हैं ना, यदि शंका ये रहे कि गाय दूध देगी कि नहीं देगी तो गाय नहीं लेंगे, किंतु जानते हैं कि सब जगह गाय दूध देती हैं, तो ये भी हमारे पास में आएगी तो बच्चा देगी और दूध देगी, इसलिए तो लेते हैं लोग, नहीं तो नहीं लेते। इसलिए देखते हैं कि आज तक जिसने भगवान का शरण लिया और उनका नाम किया, और मरते समय भी यदि उसने सुन लिया तो भव सागर को पार कर गया, मृत्यु से पार हो गया। सब काम देखते हैं, अजामिल को देखा, वाल्मीकि को देखा, नारद जी को देखा, व्यास को देखा, सुखदेव गोस्वामी को देखा, अभी भी देखते चले जा रहे, मीराबाई को देखा, सबको हम लोग देख रहे। जिसने इसका नाम लिया बस जरूर भव सागर पार हो गया। और यदि कुछ दिन समय है तो नाम भी करो और भगवान की कथाओं को सुनो। क्यों, कथाओं के माध्यम से भगवान भीतर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिन पहले तक, 30-40 वर्ष पहले, कंप्यूटर की कोई कल्पना नहीं थी, 100 वर्ष पहले विमान की कोई कल्पना नहीं थी, आकाशवाणी की कल्पना नहीं की जा सकती थी, किंतु हमारे शास्त्रों में था। रावण के पास में पुष्पक विमान था, रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर चढ़ करके आए और उस पर लाखों बंदर और सेनाएं बैठ करके आई। अभी तो 300 आदमी जा रहे हैं एक एरोप्लेन में, और उनके साथ में हजारों सेनाएं आई। और कैसे चलता था, अभी तो कंप्यूटर सिस्टम से चल रहा, और पहले मन की गति से, कंप्यूटर फेल हो जाएगा तो वो जहाज फेल हो गई, गिर गई, सभी लोग मरे गए, और उसमें फेल होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अयोध्या चलना है, बस अयोध्या लेकर के जाओ, कितने आदमी जाएंगे, जितना बैठ जाओ, लाखों 10-20 लाख बैठ जाओ, सबके लिए सारी व्यवस्था है, गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी इत्यादि, कोई मशीन और कोई चीज की जरूरत नहीं है। ऐसी चीज भारतवर्ष में थी उपलब्ध, लाखों आदमी मारे गए युद्ध में, शुक्राचार्य जी ने उनके तरफ में केवल देख लिया ऐसे, और सब उठ करके खड़े हो गए। रामचंद्र जी के बानर लोग सब मर गए, और रामचंद्र जी उनके तरफ में देखा केवल ऐसे, और कपि और भालू जीवित करके उठ हो गए, और असुर लोग मरे के मरे रह गए। देखो कैसी भी सब, ये सब विद्याएं किसमें है, भगवान नाम में है, भगवान की भक्ति में है। अभी कंप्यूटर से और वैज्ञानिक लोग और आगे बढ़े तो जीव तत्व का पता लगाएं ये क्या चीज है, अभी तक तो नहीं कुछ कर सके हैं। भगवान कर जो उनकी बुद्धि में ये सब चीजें आए, प्रेम को खोजें, ये प्रेम क्या चीज है, किसी के हृदय में प्रेम कैसे जगाया जा सकता है, ये चीज लोग सीखें। किंतु हमारे यहां भारतवर्ष में ये सभी चीजें थी, अभी भी हैं, अभी भी ऐसे भक्त लोग हैं जिनके हृदय में ये सारी चीजें हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो उनकी कथाएं को सुनता है उसके हृदय में कथाओं के रूप में इधर में चले जाते हैं। अभी आदमी समझेंगे ये सब बेकार की भूत की बातें कर रहे हैं, नहीं अनुभव की बातें हैं। कुछ कर करके देखिए, 10 दिन देखिए तो देखिए जी हृदय पिघल जाएगा कि नहीं। कठोर से कठोर आदमी हो, मांस मछली प्याज लहसुन और शराब पीना छोड़ करके बैठ करके 1 घंटा 10 दिन नाम करो तो देखो जब बदल जाएगा कि नहीं। और भगवान की कथाओं को सुनो, एकदम बदल जाए, उसके हृदय में प्रेम उमड़ आएगा। भगवान की बात सुनते ही आंखों से आंसू गिरने लग जाएगा। देखिए परीक्षा करके जरूर होगा। इसलिए कहते हैं कथाओं के माध्यम से भगवान हृदय में पहुंच जाते हैं और हृदय का सारा मल दूर कर देते हैं। मल माने क्या, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, लोगों से हिंसा द्वेष करना, बिना कारण किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी से शत्रुता करना, ये सब चीजें आज देख रहे हैं संसार में चारों तरफ में। कुछ दिन पहले महायुद्ध हुआ, अभी सभी राष्ट्र सबसे डर रहे हैं, सभी लोग कहीं वो हमसे बड़ा ना हो जाए, इसलिए संसार में ये डर व्याप्त है। इन सब चीजों को भगवान दूर कर देते हैं और भगवान क्या है उसको रियलाइज करा देते हैं। आत्मा क्या चीज है, क्यों उसको ये दुख हो रहा है, इसको रियलाइज करा देंगे हरि कथा सुनने से ही। साधु संघ ही सबसे बड़ी चीज है। यदि साधु संघ मिल गया सच्चा बोनाफाइड, रुपये पैसे वाला साधु संघ नहीं, जो रुपये लेकर के कीर्तन करते हैं या साधु संघ या भागवत पाठ करते हैं, ऐसा नहीं, जो सचमुच में ही जगत के कल्याण के लिए स्वयं भगवान का भजन करता है, दूसरों को शिक्षा करता है, देता है। भगवान हरि कथा के माध्यम से भीतर में प्रवेश करके उसके शरीर के जितना मल है, अंधकार है, अज्ञान है, सबको दूर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं, निकलते नहीं है, वो टेढ़े हैं तीन जगहों से, कमर से टेढ़े और गर्दन से टेढ़े, आंखें टेढ़ी टेढ़ी, जमुना टेढ़ी तेरी, तेरी लकुटिया टेढ़ी, तेरा ब्रज भी टेढ़ा, उनका सब कुछ टेढ़ा। यदि वो भीतर में चले जाएंगे निकलेंगे नहीं, उनके पास में जो किसी भी प्रकार से पहुंच गया उसको अब छोड़ेंगे नहीं। जरा कर कर देखो तो 10-5 दिन नाम करो तो हरे कृष्ण बैठ करके देखो, और उसमें यदि साधु संग हो तो देखिए। हम लोग कृष्ण का भजन नहीं करना चाहते थे, हम लोग जब गांव में जाते हैं प्रचार में बंगाल में या बिहार में या यूपी में, तो पिता और माताएं बच्चों को जरा अलग करती हैं, इनके पास में मत जाना, ये जादू जानते हैं, कृष्ण की बात सुना देंगे और तुम्हारा हृदय उधर में चला जाएगा, फिर तुम हमको छोड़ करके उन्हीं के साथ में चला जाएगा। बात कुछ तक सही है, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, जहां वो सुनते हैं तहां भगवान के तरफ में रम जाते हैं। वो हरि कथा क्या जिसमें सबको रमा नहीं दिया, उसके हृदय में विश्वास पैदा नहीं कर दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कथाओं के माध्यम से भीतर में पहुंच जाते हैं और फिर उसको पवित्र कर देते हैं, उसके अंदर में भक्ति का प्रकाश कर देते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाती है। ग्रंथि क्या है, मैं अरु मोर तोर तय माया, ये मेरा है ये तेरा है, ये तेरा है ये मेरा है, क्या तेरा मेरा, ये बेटा मेरा है ये भैया मेरा है, और फिर बेटे में भी देखो ये मेरा है ये मेरी पत्नी का है, ये तेरा है तेरे लिए ये दे दिया, और फिर स्त्री में भी अपने में भी ये तेरा है, आभूषण का जितना ये है सब तेरा है, और यदि छोड़ करके जाएगी तो आभूषण भी ले लूंगा, ये मेरा है, बैंक में जो है वो तेरा है और जो मेरे नाम से है वो मेरा है, फिर उसमें से भी यह मेरा है। यदि शरीर पर कोई यहां पर चोट हो ना, हाथ में गैंग्रीन हो जाए और देखेगा ये मरेगा ये बढ़ जाएगा तो हाथ को काट देते हैं, इस यहां तक भी हाथ काट देंगे और देखेंगे जब दुख होगा तो इस शरीर को भी छोड़ देंगे, यह शरीर मैं नहीं हूं मेरा है। यदि पत्नी से झगड़ा होता है तो पत्नी को भी छोड़ देंगे और पत्नी भी पति को छोड़ देगी, अब जब दुख होगा तो यह शरीर को भी छोड़ देंगे, ये जो मेरा है अपने के बचाने के लिए। किंतु उसका भी आत्मा का भी आत्मा कृष्ण है, यदि उसे छोड़ देंगे फिर बच नहीं सके। इस चीज को समझो, आत्मा का भी परम आत्मा ये भगवान है, इसलिए उस भगवान का भजन करना चाहिए। अरे अभी मर जाएंगे, कुत्ता होकर के जन्मेंगे तो कुत्ती मिल जाएगी 10-20, और यदि कुत्ती हो गया तो 10-20 कुत्ते मिल जाएंगे और बच्चे एक साथ में हमारे 10 होंगे। अभी तो एक के लिए तरस रहे हैं हम, और उसमें पालन पोषण करने के लिए कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। लड़की की शादी होगी कि नहीं इसकी भी चिंता नहीं, बच्चे का एडुकेशन होगा शिक्षा होगी किसकी भी चिंता नहीं। जहां मिल गया वहीं पर सो गए, और हम लोगों को सोने के समय में क्या होता है, नींद नहीं आती, तरह तरह की समस्या, बिजनेस फेल हो रहा है, क्या करें, नींद नहीं आती, गोली खाएंगे, और यदि 2 के बदले 4 खा लिया तो बस चले गए। इन चीजों को समझना चाहिए। शांति हमको चाहिए, सुख चाहिए, किंतु हम जो काम कर रहे हैं उसे शांति और सुख मिलेगा कि नहीं, गारंटी है। यदि भगवत भजन नहीं करते, भगवान को नहीं ग्रहण करते, उनका भक्ति और नाम नहीं करते, कभी भी सुख और शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए ये कहते हैं कि देखो, अजामिल एक व्यक्ति था, बड़ा ही सदाचारी था, ब्राह्मण का लड़का, मांस मछली अंडे और शराब नहीं पीता था, माता पिता की सेवा करता था, पढ़ा लिखा था, वेदों का अध्ययन किया था, रोज अग्नि में होम करता था, सत्यु की बात। कोई एक दिन जंगल में गया माता पिता के हवन करने के लिए लकड़ी लाने के लिए, और वहां देख करके उसका चित्त बड़ा खराब हो गया। वहां एक लड़के को देखा शूद्र जाति का, और एक लड़की को देखा, परस्पर मिल रहे थे और अजीबोगरीब बहुत घृणित बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे और जो नहीं करना चाहिए वही सब कर रहे थे। देख करके उसका मन बड़ा, कभी आधे नंगे दोनों, देख करके इसका मन चंचल हो गया। बहुत इसको कोशिश की अपने मन को कंट्रोल में करें, किंतु वायु को कंट्रोल करना सहज है किंतु मन को कंट्रोल करना सहज नहीं है। वायु को कंट्रोल कैसे किया जाता है समझिए, 1 मिनट जरा श्वास बंद कीजिए तो 1 मिनट नहीं होगा, 2 मिनट कीजिए तो वो तो होगा ही, 5 मिनट के लिए श्वास बंद कर दीजिए देखिए मर जाएंगे। इसलिए वायु को भी कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, किंतु हो सकता है। बहुत से ऐसे साधु पुरुष लोग हैं जो कि 50,000 वर्ष तक भी मन को कंट्रोल में रख करके चुपचाप बैठे। महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय कोई ऋषि यहां से निकल करके चले गए हिमालय में, और मन को रोक लिया, श्वास भी रोक लिया, और उसको हृदय में लेकर के यहां ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और चुपचाप ऐसे बैठ गए। 5,000 वर्ष के बाद में जब आए, अरे भाई जब मैं जीवित था, जिस समय था उस समय में देखा कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, उसमें क्या हुआ क्या, अरे वो आज की बात है, वो तो है 5,000 वर्ष बीत गए। अरे 5,000 वर्ष में क्या हुआ क्या उसमें, तो पांडवों की जीत हो गई, कौरव लोग मारे गए, इसके बाद में, अरे भाई 5,000 वर्ष हो गए। ऐसे भी आदमी जोगी पुरुष हैं, अभी हिमालयों में और दूसरे जगहों में हैं, वो श्वास को रोक करके 5,000 का 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं योगी लोग, किंतु हम लोग वो नहीं चाहते। भगवान ने दिया है मुंह, भगवान ने दिया है आंख, भगवान ने दिया है कान, इसे भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा कान से सुनेंगे, जीवन को व्यर्था बात नहीं करेंगे। श्वास को चढ़ाना ये योग, हठ योग, इससे कुछ अधिक लाभ नहीं। इसलिए जीवन में ये एक दिन भी जीवित रहे तो भगवान का नाम कीर्तन करें, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, भगवान की ये सब कथाएं सुनेंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वो ध्यान चढ़ाने से, योगाभ्यास करने से, महेश जोगी इत्यादि जो करते हैं जीवन को बर्बाद करना है, उसे कुछ लाभ नहीं, उसे फिर भी मरोगे। कसरत करने से शरीर से भगवान नहीं मिलते हैं, वो आत्मा से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। अभी कोई एक कोई गौड़ीय वैष्णव वहां पर जो कुछ थोड़ा सा विश्वास नहीं था गया उनके पास में, महाराज जी हमको भी योग करा दीजिए। उन्होंने कहा जी मैं, अरे तुम लोग हरिनाम करता है तुमको योग की क्या जरूरत है, यही तो भक्ति योग है जो सबसे बड़ी योग है। उसमें जीवन मरण बंद नहीं होगा, दुख दूर नहीं होंगे, 5000 वर्ष के बाद में फिर लौट करके आओगे, तुम्हारी मृत्यु होगी, दुख भोगना पड़ेगा जो कर्म किया है। और भक्ति योग से चित्त शांत, सारे पाप दूर हो जाएंगे, जीवन मरण की समस्या हल हो जाएगी, हम उसको सुख और शांति पाएंगे। अजामिल कंट्रोल नहीं कर सका, घर आया, कैसे उससे मिले लड़की से, घर का सामान लेकर के बेच उच करके पैसे लिए, मदिरा खरीदा, शराब और कुछ घर की चीजें बांट ली पोटली में, कुछ गहने, और वेश्या के पास में पहुंच गया और सारा उसको चरणों में दे दिया। वो बड़ी खुश हुई और सब कुछ को ले लिया। कुछ दिन के बाद में जब घर का सारा सामान सब नष्ट कर दिया, माता पिता को भी छोड़ दिया, बहू को भी छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, तो उसी के साथ में रह गया। रहने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उसे 8 लड़के हुए, 8 लड़के होते होते वो बूढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु आई। छोटे बच्चे का नाम, पूर्व जन्म का जो संस्कार इस जन्म का संस्कार था, आखिर तो था तो हिंदू ही सनातनी, उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। इस नाम के रखने से ही जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, देखा जे क्या करूं, डर के मारे नारायण 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 लड़के को पुकारा और भगवान अनुग्रह करके नारायण 4 दूतों को भेजा, उसकी रक्षा हो गई। उसने कहा जितना भी पापी आदमी है, यदि भगवान का नाम अंतिम समय में करता है तो उसके पाप सब दूर हो जाते हैं, जितना भी जघन्य पाप ब्रह्म हत्या तक भी हो, यदि उस समय नाम करें अंतिम समय में, सारे पाप दूर हो जाएंगे। मृत्यु को ऊपर में सिर पर पैर रख करके चलाया जाता है। वो भी जम के दूत लौट गए और वो हरिद्वार में जाकर के फिर भगवान का नाम करके भगवान का भक्ति पाया। इसलिए भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में अंतर्हित कर दी है, दे दी है। इसलिए भगवान के द्वारा जो नहीं होगा नाम के द्वारा होगा। आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण में 1,00,000 श्लोक बतलाया था, यहां 1,00,000 श्लोक, सभी लोग देख करके देवता दानव और मनुष्य तीनों लड़ने लगे जी हमको मिलनी चाहिए रामायण हमको। शंकर जी ने कहा जी मैं बंटवारा कर देता हूं 3 भाग में। 1,00,000 श्लोकों को उन्होंने बांटा 3 भागों में, तो कितने मिल गए, 33,000 करके दे दिया, तो 99,000 हो गया, 1 श्लोक बच गया, 1,000 उसको फिर डिवाइड कर दिया तो फिर कितना हो गया, 333 तो भी 1 श्लोक रह गया। अब इस श्लोक को बांटना है, इस एक श्लोक में अनुष्टुप छंद होता है संस्कृत में, वो होता है उसमें, उसमें 4 चरण होते हैं, 1-1 चरण उसमें से दे दिए। अब रह गया 1 चरण, 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं, 8 अक्षर में से 2-2 दे दिए तीनों को, 6 हो गया, अब बाकी रह गया 2, यही राम शब्द है। उन्होंने कहा ये मैं नहीं दूंगा, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए अपने हृदय में रखता हूं। वही काशी में देते हैं या जीवों को देते हैं मरते समय, तो उनकी गति हो जाती है। क्या तात्पर्य इसका, समस्त शास्त्र वेद उपनिषद सार का है भगवान का नाम कृष्ण राम इत्यादि नाम। इस पर भरोसा रखो। यदि हम लोग मैक्स मुलर के पुस्तकों पर विश्वास रख सकते हैं, हम न्यूटन के पुस्तकों पर और थ्योरियों पर विश्वास रख सकते हैं, हम अपने प्रोफेसर की लिखी हुई पुस्तकों को डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, व्यवसाय में यदि हम व्यवहार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, तो हम व्यास के बातों पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते। वो थोड़ी कभी गलत नहीं होगी, कोई नई चीज नहीं है जो जगत में से, उसके पहले ही व्यास जी ने ये सब लिखा है। इसलिए उनके बातों पर विश्वास करके जरूर भगवान के नाम में विश्वास किया। दूसरी बात, भक्ति किसको कहते हैं यह समझने के लिए प्रहलाद जी का चरित्र हमको देखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बतला रहे हैं, सारी कथा सात दिन के अंतर में ये बतला रहे हैं। देखो युधिष्ठिर महाराज जी का यज्ञ हो रहा था, रायसुई यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में कृष्णचंद्र जी चरण धोने का काम लिया। ये स्वयं भगवान सबसे छोटी सेवा ली, क्या सेवा ली, जो यहां पर आएंगे सबका चरण मैं धोऊंगा और तब वो जाएंगे। उसमें दुर्योधन, शिशुपाल, दंत वक्र, जरासंध इत्यादि बड़े बड़े असुर लोग सभी आए। उसमें कृष्ण आए, यादव लोग आए और अब पांडव लोग भी आए, सभी लोग उसमें आए। उस समय में शिशुपाल ने कृष्ण को 100 गालियां दी और 101 ही जब यही आरंभ की, कृष्ण ने उठाया चक्र और थोड़ा सा ऐसे कर दिया और वो चक्र जाकर के काट करके उनके हाथों में आ गया। उसमें से एक तेज निकला और तेज निकल करके कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर दिया। महाराज युधिष्ठिर कहते, अरे ये कृष्ण को इतनी गाली दी तो इसके मुख में कोढ़ क्यों नहीं हो गई? कोढ़ जानते हैं ना, रोग होता है कुष्ठ व्याधि, क्यों नहीं हो गया? इसको पाप क्यों नहीं लगा जो इसकी आत्मा कृष्ण में मिल गई? ये तो इसको मुक्ति मिल गई। तो उन्होंने बतलाया भगवान का किसी के प्रति शत्रुता भाव नहीं है, सभी भगवान के ही तो पुत्र हैं। किसी को थप्पड़ मार करके कृपा करते हैं, किसी को प्रेम से करते हैं, मैया जैसे सबको स्नेह करती है अपने बेटों को। किसी को यदि पेट खराब है अपने बेटे का और बेटा पुलाव मांग रहा है, पुलाव माने खीर मांग रहा है, तो देगी? देने से वो मरेगा। और जो स्वस्थ लड़के हैं उनको देगी? ये उसमें वैषम्य में नहीं है, ये उस लड़के को दे रही है, उस लड़के को क्यों नहीं दे रही? अरे जो जिसके पात्र है उसको वो दे रही है। भगवान ऐसे ही करुणा करने वाले हैं। प्रहलाद महाराज जी भगवान के भक्त थे, उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु माने हिरण्य माने सोना, अक्षु माने नेत्र या बिछौना। जो ये समझता है कि रुपए पैसे के द्वारा, धन दौलत के द्वारा मैं सुखी रह सकता हूं जीवन में, उसको कहते हैं हिरण्यकश्यपु या हिरणाक्ष। अब संसार में देखिए कितने हिरणाक्ष हैं, पहले तो दो थे। ऐसा कौन है जो ऐसा नहीं समझता? समझते हैं कि अर्थ के द्वारा ही हम सुखी रह सकते हैं, इसलिए हम सब उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के दल में हैं। और जो ये जानते हैं कि भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से ही जीवन में सुखी और शांति से रहा जा सकता है, उनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद महाराज जी से एक दिन उसके बाप ने पूछा, बेटा तुम अभी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की हो गई है, स्कूल में दिया था 5-6 महीने हो गए हैं, बतलाओ तो अपने स्कूल में क्या तुमको अच्छी शिक्षा लगी, कौन पढ़ाता था उनको? शुक्राचार्य जी, उनके बेटे शुक्र के आचार्य। शुक्र माने जिसे जन्म होता है उसको कहते हैं शुक्र। शुक्र से माता पिता के योग से पुत्र होता है, संतान होता है, उसके आचार्य हैं। कैसे बेटा होगा, कैसी बेटी होगी, कौन मरेगा, कौन जिएगा, को कैसे जीवित किया जाए, मंत्र पढ़ा और उसको जीवित कर देते। यहां तक कि एक आदमी उनके पास में बृहस्पति का लड़का सीखने के लिए गया, संजीवनी मंत्र, और असुरों ने उन्हें मार करके और उसको खिला दिया और वो हजम कर गए। फिर देखा जी वो कहां गया, ध्यान में देखा, रहे उसको तो हमको खिला दिया है, वहीं से मंत्र जपा और वहीं से वो जीवित होकर के निकल करके चले, उनके पेट से निकल करके चले आए। ऐसे ये संजीवनी मंत्र जानने वाले लोग हैं, ऐसी विद्याएं थी और वह विद्याएं अभी भी हैं। यह है भगवान का नाम। गीत भागवत में ओंग बस क्या है, बस ओंग वासुदेवे, मैं कृष्ण की शरण जाता हूं, कृष्णम शरणम मम इत्यादि सब ये साधारण मंत्र हैं। नारद जी को जो मंत्र दिया गया था इत्यादि मंत्र है, इनसे भी बहुत ऊपर है। क्लिंग कृष्णा इत्यादि है भागवत में, शुद्ध रूप में दिया गया, जिनकी आंख होगा वो समझेगा, दूसरे नहीं समझेंगे। बहुत गुप्त रूप से दिए गए हैं, इसलिए ये मंत्रों में ये सब शक्तियां हैं। प्रहलाद महाराज जी से पूछा, प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि इस संसार में मैंने यही सुना है, समझा है कि ये संसार रूपी जो कुआं है इसको छोड़ करके भगवान का भजन करना ही हमारे लिए परम कर्तव्य हो गया। एक महीने घंटा हमारे लिए यही कर्तव्य है। क्या संसार एक कुआं है? संसार माने क्या? सम श्रुति सम्यक रूपे सरति जह, जो जन्म लेता है फिर बढ़ता है फिर बढ़ता है फिर इसके बाद में वृद्ध हो जाता है, इसके बाद में मर जाता है। अभी कोई नया कपड़ा इसको धोया, नया था, 10 दिन के बाद में पुराना होगा, 15 दिन के बाद में फिर वो मैला हो जाएगा, फिर उसको साफ करो, इस तरह से उसकी आयु खत्म हो जाएगी, वो सड़ गल जाएगा, फट जाएगा, चिथड़ा हो जाएगा, फिर अंत में मिट्टी में बदल जाएगा। इसको कहते हैं संसार। इसलिए संसार एक कुआं है, इसको छोड़ करके भगवान का भजन करना ही, चाहे वो गृहस्थ रहे चाहे त्यागी रहे, उसमें कोई अंतर नहीं। संसार को छोड़ देने का ही तात्पर्य नहीं, उसके प्रति आसक्ति छोड़ना हमारा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने कहा, हे असुरवर्ज्य, ये संसार रूपी को छोड़ करके भगवान का भजन करना ही हमारे लिए कल्याण है। अब देखिए, संसार को किसको कहते हैं? एक आदमी था, वो जंगल में गया, थोड़ी देर के जाने के बाद में एक बाघ ने उस पर आक्रमण किया। अब तो पेड़ तो बड़े मोटे मोटे हैं, वो हमारी जान की रक्षा कैसे होगी, प्राण कैसे बचे? बहुत जोर से दौड़ा और बाघ उसका पीछा किया। अब थोड़े देर का अंतर रह गया, अब पकड़ने वाला था। इतने में एक कुआं मिला और कुएं के ऊपर में पेड़ कुछ छोटे छोटे पीपल के दरख्त उग रहे थे, बस पेड़ की डाली पकड़ी और उसमें झूल गया। नीचे देखा सांप काले काले, ऊपर में बाघ हुंकार कर रहा। ऊपर जाए तो प्राण जाए, नीचे यदि जाता है तो सांप उसे डसेंगे। इतने में देखा जिस डाल को पकड़ कर